दिन भर 5 अक्टूबर दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदल। भारत और जर्मनी के बीच 18 सहमति पत्रों पर दस्तखत।
वी सी जर्मनी एज ए नेचुरल पार्टनर इन अचीविंग अवर विजन ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन।
जानेंगे लालू प्रसाद के गढ़ रहे राघोपुर के लोगों की क्या है समस्याएं।
दिक्कत है कि अब यहाँ से हम लोग को कोई बीमार पड़ गया, कोई सीरियस हो गया, तब उसको ले जाने में हम लोग के पटना पहुँचाने में कम से कम 3 घंटा 4 घंटा समय खत्म हो जाता है। रात का समय हो गया तो वो भी नहीं पहुँच पाया ही है, उसको प्राण चला गया।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। भारत और जर्मनी के बीच वित्तीय सुरक्षा और नागरिक उड्डयन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिनमें 14 एमओयू दोनों सरकारों के बीच और 4 दोनों देशों की निजी कंपनियों के बीच हुए हैं। जर्मनी ने भारत को सौर ऊर्जा के विकास के लिए 1 अरब यूरो देने का ऐलान किया है। एंगेला मर्केल भारत में तीसरी इंडो जर्मन अंतरदेशीय वार्ता में हिस्सा लेने आई हैं। 6 अक्टूबर को वो बेंगलुरु जाएंगी, जहां मोदी भी उनके साथ होंगे। बेंगलुरु में वे बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगी। अफगानिस्तान की सरकार ने एक बार फिर एमएसएफ के अस्पताल में तालिबान के लड़ाकों के छिपे होने की बात कही है। कुंदूज में एमएसएफ के अस्पताल पर शनिवार को हवाई हमले किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय संस्था एमएसएफ ने इस बात से इनकार किया है कि तालिबान के लड़ाके उसके अस्पताल का इस्तेमाल हमलों के लिए कर रहे थे। एमएसएफ ने अस्पताल पर हमले की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जाँच कराने की मांग की है। एमएसएफ की अध्यक्ष मिनी निकोलाई ने कहा,
This is a disgusting statement that the Afghan authorities have made.
अफगान सरकार का बयान घिनौना है, जिसमें कहा गया है कि अस्पताल में तालिबान लड़ाके छुपे हुए थे, इसलिए उससे निशाना बनाया गया। पहले तो वो इसे स्वीकार कर रहे हैं कि अमरीकी सरकार के सहयोग से ये हमले किए, इसका मतलब ये एक युद्ध अपराध है। दूसरा, कुंदूज में लड़ाई में घायल हुए लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा था। अस्पताल में मरीज और स्वास्थ्य कर्मियों समेत करीब 180 लोग मौजूद थे। क्या ये बहाना है अस्पताल पर हमला करने का? ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन है और ये अस्वीकार्य है। ये थे एमएसएफ की अध्यक्ष मिनी निकोलाई के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूस के लड़ाकू विमान के तुर्की के वायु क्षेत्र में घुसने पर तुर्की ने सख्त एतराज जताया है। शनिवार को सीरिया की सीमा के पास तुर्की के वायु क्षेत्र में रूस का एक लड़ाकू विमान घुस गया था, जिसे तुर्की ने रोका था। नाटो गठबंधन ने वायु क्षेत्र के उल्लंघन को अस्वीकार्य बताया और गठबंधन के सदस्यों की आपात बैठक बुलाई है। तुर्की ने कहा है कि उसके 2 लड़ाकू विमानों को रूस के जेट विमानों को रोकने के लिए भेजा गया था। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगन ने यूरोपीय यूनियन के नेताओं से ब्रसेल्स में सीरिया के संकट पर चर्चा की है। प्रशांत महासागर के तट पर स्थित 12 देशों में दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने को लेकर सहमति बन गई है। इन देशों में अमेरिका और जापान भी शामिल हैं। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप दुनिया के उत्पादन का 40% उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है। अमेरिका, जापान, मेक्सिको और ऑस्ट्रेलिया समेत सभी देशों के लिए इससे व्यापार में आ रही अड़चनें दूर होंगी और समान मानक तय किए जा सकेंगे। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने इस फैसले का स्वागत किया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। भारत और जर्मनी के बीच वित्तीय सुरक्षा और नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत की 2 दिन की यात्रा पर राजधानी दिल्ली पहुंची जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच चली वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन समझौतों की जानकारी दी। जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
आज की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने 18 क्षेत्रों में सहयोग करने पर हस्ताक्षर किए, जिनमें 14 समझौते दोनों सरकारों के बीच और 4 दोनों देशों की निजी कंपनियों के बीच हुए। जर्मनी ने भारत को सौर ऊर्जा के विकास के लिए 1 अरब यूरो देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय आईटी स्किल्स और जर्मन इंजीनियरिंग मिलकर कमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के आर्थिक विकास में जर्मनी का काफी हाथ है।
वी सी जर्मनी एज ए नेचुरल पार्टनर
प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि आर्थिक परिवर्तन में जर्मनी भारत का एक स्वाभाविक साझेदार है। चांसलर एंगेला मर्केल ने दोनों देशों के बीच हुए समझौते पर खुशी का इजहार किया। चांसलर एंगेला मर्केल कह रही थी कि हमने वक्त का सही इस्तेमाल करके कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे भारत और जर्मनी के बीच आर्थिक रिश्ते और मजबूत होंगे। चांसलर एंगेला मर्केल का प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद भारत का ये पहला दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी अप्रैल में जर्मनी के दौरे पर गए थे, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच रिश्तों में ज्यादा गर्मजोशी आई है। उधर भारतीय मीडिया के अनुसार चांसलर एंगेला मर्केल के संग आए जर्मन औद्योगिक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में निवेश के माहौल पर निराशा जताई है। उनका कहना था कि श्री मोदी के नेतृत्व में वो बदलाव की आशा कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसके अलावा जर्मनी ने पारस्परिक कानूनी सहायता समझौते पर हस्ताक्षर करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि भारत में मृत्युदंड का प्रावधान अब भी बाकी है। चांसलर एंगेला मर्केल भारत में तीसरी इंडो जर्मन अंतर्राष्ट्रीय वार्ता में हिस्सा लेने आई हैं। दौरे के आखिरी दिन 6 अक्टूबर को वो बेंगलुरु जाएंगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी भी उनके साथ होंगे। बेंगलुरु में वो एक बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगी। भारत और जर्मनी के बीच पारंपरिक रूप से अच्छे संबंध रहे हैं। जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। पिछले साल दोनों देशों के बीच 16 अरब डॉलर का आपसी व्यापार हुआ था। आज दोनों नेताओं ने आशा जताई कि भविष्य में ये व्यापार और भी फले फूलेगा। जुबैर अहमद, बीबीसी, दिल्ली।
रूसी सैन्य विमानों के तुर्की के हवाई क्षेत्र में बिना अनुमति घुसाने के बाद तुर्की के विदेश मंत्री ने रूस के विदेश मंत्री और नाटो के मंत्रियों के सामने अपनी नाराजगी जताई है। तुर्की के राष्ट्रपति का कहना है कि उन्होंने रूस से कहा है कि रूस जो भी कर रहा है वो खासकर तुर्की को नामंजूर है, और तुर्की के विरोध के बाद भी रूस का सीरिया में हवाई हमले करना उनके लिए चिंता का विषय है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए वैभव श्रीवास्तव से।
तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि उसकी वायुसेना के विमानों को आपातकालीन स्थिति में तुर्की के औपचारिक हवाई क्षेत्र में फैला दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रूसी सैन्य हवाई जहाज तुर्की के हवाई क्षेत्र में बिना अनुमति घुस आए थे और तुर्की वायुसेना के रोके जाने पर तुर्की से निकलकर सीरिया में चले गए। तुर्की के विदेश मंत्री ने इस घटना के विरोध में रूसी विदेश मंत्री और नाटो देश के मंत्रियों से बातचीत की। खबरों के अनुसार रूस सीरिया में बशर अल असद के विरोधियों के खिलाफ हवाई हमले कर रहा है। इन हवाई हमलों की आलोचना अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन और तुर्की ने भी की है। रूस के हवाई हमले बीते हफ्ते शुरू हुए थे और रूस लगातार कहता आया है कि वो सिर्फ चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट के विरुद्ध हमले कर रहा है, परंतु दूसरी ओर सीरियाई कार्यकर्ता कहते हैं कि रूस के सभी दावे गलत हैं और रूस द्वारा किए गए हमलों में चरमपंथियों को नहीं परंतु राष्ट्रपति बशर अल असद और सीरियाई सरकार के विरोधियों को निशाना बनाया जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तईब अर्दोआन ने कहा है कि सीरिया में रूस का हस्तक्षेप एक गंभीर गलती है और ऐसा करने से रूस बाकी देशों से और भी अलग हो जाएगा। रूस द्वारा लिए गए कदम और सीरिया में हवाई हमले खासकर तुर्की के लिए अमान्य हैं। मैंने यही बात अपने मॉस्को दौरे पर और कुछ दिन पहले हुई बातचीत में व्लादिमीर पुतिन से कही थी। रूस एक गंभीर गलती कर रहा है, ये रूस को बिल्कुल अकेला बना देगी। हमारे विरोध करने के बाद भी रूस ऐसा कर रहा है और हमारे लिए ये चिंता की बात है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तईब अर्दोआन के शब्द। तुर्की और रूस के बीच इसलिए तनातनी चल रही है क्योंकि रूस बशर अल असद को समर्थन दे रहा है और तुर्की सीरिया के विरोधी गुटों को। अमेरिका के नेतृत्व में चरमपंथियों पर हमला कर रहे गठबंधन में तुर्की, ब्रिटेन और सऊदी अरब सहित कई देश शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ इस गठबंधन के खिलाफ कहते हुए सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा है कि पश्चिमी देशों का उद्देश्य है सीरिया के मूलभूत ढांचे को तबाह करना और खून खराबा करना। अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस पर आरोप लगाए हैं कि सीरिया में रूस की दखलंदाजी से चरमपंथ को बढ़ावा मिलेगा। यही आरोप बशर अल असद ने अमरीका के नेतृत्व वाले गठबंधन पर लगाए हैं और उसके द्वारा हो रहे हवाई हमलों की आलोचना करते हुए कहा कि अगर सीरिया के क्षेत्र में चरमपंथियों को खत्म करना है तो सीरिया, रूस, ईरान और इराक को एक साथ होना पड़ेगा। इस गठबंधन को कामयाब होना ही पड़ेगा, वरना हम देखेंगे कि कैसे ये पूरा क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। मुझे भरोसा है कि ये गठबंधन काम करेगा। ऐसा तब होगा अगर चरमपंथ का साथ देने वाले देश चरमपंथियों के विरुद्ध हो जाएं या केवल ऐसा करना बंद ही कर दें। बशर अल असद ने यह भी कहा कि अमरीका के नेतृत्व वाला गठबंधन चरमपंथ को रोकने में नाकामयाब रहा है। उन्होंने रूस के हस्तक्षेप को मध्य पूर्व की सुरक्षा और सीरिया में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उनका कहना था कि सीरिया बदलाव के दौर में है और अंत में कोई बाहरी ताकत ये फैसला नहीं लेगी कि सीरिया में क्या हो, ये फैसला केवल सीरिया के लोग करेंगे।
तुर्की का रूस के प्रति विरोध। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र बनारस से खबरें आ रही हैं कि वहां पर हिंसा हुई है और कुछ इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया गया। आइए सीधे चलते हैं अतुल चंद्रा के पास। अतुल, बताइए क्या खबर है बनारस से आपके पास?
देखिए, बनारस में काफी आगजनी हुई है। 4-5 गाड़ियों को आग लगा दी गई है और 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये सब हुआ है इस वजह से क्योंकि 22 सितंबर को वहां की पुलिस ने जो वहां के संत हैं स्वामी अभिमुक्तानंद, उन्होंने गणेश प्रतिमा का विसर्जन गंगा में करने की ठान ली थी, लेकिन प्रशासन ने उनको वो करने से रोका था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उसके विरोध में आज स्वामी ने उन संत ने एक प्रतिकार रैली निकाली और उस प्रतिकार रैली में आगजनी हुई। आगजनी के बाद टियर गैस शेल छोड़े गए। एक फोटो पत्रकार को, अंग्रेजी दैनिक का है वो, उसको बुरी तरह से मारा है। एक पुलिस चौकी को भी आग लगा दी गई है गुदौलिया की। उसके बाद फिर पुलिस को वहां पर दशाश्वमेध घाट, कोतवाली और चौक थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाना पड़ गया।
तो अभी क्या खबरें आ रही हैं? क्या स्थिति नियंत्रण में आ गई है या अभी भी तनाव है?
स्थिति अभी बहुत तनावपूर्ण है। पूरी तरह से नियंत्रण में, मतलब वैसे तो आ गई है नियंत्रण में, भीड़ को काबू कर लिया गया है, लेकिन तनाव बना हुआ है और सामान्य स्थिति अभी नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका अतुल चंद्रा। भारत में काला धन एक बड़ा मुद्दा रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले से ही काला धन देश में वापस लाने की बात करती रही है, लेकिन अब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि ज्यादातर काला धन भारत में ही है। क्या वित्त मंत्री और सरकार अपनी बात से पलट रहे हैं? सुनिए विनीत खरे की इस रिपोर्ट में, जो चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषण से शुरू हो रही है।
ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपए ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपए।
ये थे प्रधानमंत्री बनने से पहले भाषण देते नरेंद्र मोदी। भाजपा ने चुनाव जीता, लेकिन चुनाव जीतने के बाद एबीपी न्यूज चैनल से बातचीत में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा,
देखिए ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। ये जो काले धन वापिस लाकर गरीबों को फायदा पहुँचाने की बात है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है।
विपक्ष सरकार पर लगातार काले धन को वापस लाने का वायदा नहीं पूरा करने का आरोप लगाता रहा है। दबाव को देखते हुए सरकार ने काला धन कानून संसद में पारित करवाया, लेकिन विपक्ष की मांग लगातार रही कि लोगों के खाते में पहुंचने वाले 15 लाख रुपए आखिर कहां हैं? और अब काले धन पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि अधिकांश काला धन भारत में ही है। साथ में उनका कहना है कि नए कानून के अंतर्गत विदेश में अघोषित संपत्ति का खुलासा करने के लिए 90 दिन की जो पालन समयावधि दी गई थी, उसमें 638 लोगों ने 3,770 करोड़ रुपए खुलासा किया है। हालांकि इस आंकड़े को संशोधित करके 4,147 करोड़ कर दिया गया है। विदेश में अघोषित संपत्ति का खुलासा करने वाले करदाताओं को 30% टैक्स और 30% की दर से जुर्माना 31 दिसंबर 2015 से पहले जमा करना है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये घोषित रकम HSBC और लाइकेंस्टाइन बैंक में भारतीय खाता धारकों के अकाउंट में जमा पाए गए 6,500 करोड़ रुपए से अलग है। वित्त मंत्री के इस ताजा बयान पर काले धन पर द ब्लैक इकोनॉमी इन इंडिया नाम की किताब लिख चुके प्रोफेसर अरुण कुमार का कहना था,
पहले ही सरकार को पता करना चाहिए था कि कितना पैसा बाहर है, कितना ला सकते हैं, तो उस पर कोई रिसर्च नहीं किया उन्होंने, और बिना रिसर्च किए ही उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि बहुत पैसा बाहर है और वो जब आ जाएगा देश में तो सबको 15 लाख रुपए प्रति परिवार मिल जाएगा। तो ये मतलब कोई आंकड़ों के या तथ्यों के आधार पे नहीं था।
उधर सरकार की इस बात को लेकर भी आलोचना हो रही है कि नए कानून के अंतर्गत जितनी अघोषित संपत्ति की घोषणा की उम्मीद सरकार ने लगाई थी उतना खुलासा सामने नहीं आया है। केपीएमजी में कर विभाग के प्रमुख गिरीश वनवारी कहते हैं,
ये एक्चुअली एक्सपेक्टेड लाइन से बहुत ही कम है, एक्सपेक्टेशन इससे बहुत बड़ी नंबर की थी, पर क्या हुआ है ना, ये प्रोसेस में लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन देंगे वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा नहीं रहेगा, प्रोसेस कैसे चलेगी, फर्दर हैरेसमेंट होगा नहीं होगा। अगर कॉन्फिडेंस लोग को होता तो ये शायद नंबर ज्यादा होता, पर सडनली ये नंबर काफी कम है, आशाओं से काफी कम है।
लेकिन जब वित्त मंत्री ये कहते हैं कि ज्यादातर काला धन भारत के भीतर ही है तो उनका इशारा किन सेक्टरों की ओर है? गिरीश वनवारी,
सबसे बड़ा सेक्टर होता है रियल एस्टेट, बहुत बेनामी प्रॉपर्टीज में होती है और अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टीज में होती है, तो मोस्ट ऑफ इट रियल एस्टेट में होगा।
एक राय ये भी है कि विदेशी संपत्ति के खुलासे पर भारी कर के कारण भी लोगों में उत्साह कम था, लेकिन अब सरकार का कहना है कि जिन लोगों ने इस घोषणा का फायदा नहीं उठाया उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर काले धन पर राजनीति जारी रहेगी, उस पर सवाल भी उठते रहेंगे। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
भारत प्रशासित कश्मीर में हुई विभिन्न मुठभेड़ों के दौरान 4 सैनिक और 3 चरमपंथी मारे गए हैं। सैनिक अधिकारियों का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के निकट कुपवारा जिले में चरमपंथियों ने एक जंगल में पनाह ली है और उनके विरोध में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक सत्र के दौरान भारत और पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के बारे में परंपरागत स्टैंड दोहराए जाने के बाद घाटी में हिंसक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
श्रीनगर में तैनात भारतीय सेना की 15वीं कोर के प्रवक्ता का कहना है कि ये झड़प उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के निकट हथरड़ा जंगलों में हुई। प्रवक्ता के मुताबिक सशस्त्र चरमपंथियों और सेना के बीच घमसान की झड़प में अब तक 4 सैनिक मारे गए हैं। प्रवक्ता के मुताबिक निकटतम जंगलों में एक और झड़प के दौरान एक अज्ञात चरमपंथी मारा गया। अधिकारियों ने बताया कि हथरड़ा में विशाल वन क्षेत्र का घेरा किया गया है और चरमपंथियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन जारी है। कल रात भी दक्षिणी कश्मीर के त्राल कस्बे में सेना ने दावा किया कि जैश मोहम्मदी नाम के चरमपंथी गुट के 2 चरमपंथियों को एक मुठभेड़ के दौरान मारा गया। हथरड़ा ऑपरेशन के बारे में सेना के प्रवक्ता कर्नल एनएन जोशी ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान चरमपंथियों के हमले में 3 सैनिक मारे गए और एक लापता हो गया, जिसकी लाश बाद में तलाशी अभियान के दौरान मिली। हिंसक घटनाओं में एक ऐसे वक्त बढ़ोतरी हुई है जब भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने न्यूयॉर्क में हुए संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक सत्र में कश्मीर के बारे में परंपरागत स्टैंड अपनाया। इस बीच करीब 1 शताब्दी पहले हिंदू महाराजों के दौर में बनाए गए गोमांस विरोधी कानून को दोबारा लागू करने के अदालती आदेश पर राज्य में राजनीतिक विवाद बना हुआ है। इस कानून को चैलेंज करने की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की पीठ द्वारा फैसला सुनाने की घोषणा की है। अलगाववादियों ने इसके विरोध में आंदोलन छेड़ा है और विधानसभा में भी आज अपोजिशन ने इस कानून को खत्म करने की मांग की। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। बिहार चुनाव की सरगर्मी का असर अमरीका में भी दिखाई दे रहा है। बिहार से अमरीका जाकर बसे लोगों की नजर विधानसभा चुनाव पर है। चुनाव के पहले चरण में 12 अक्टूबर को वोटिंग होगी। उसके 2 दिन पहले अमेरिका में 100 से ज्यादा शहरों में लिट्टी पर चर्चा होगी। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट के साथ सलीम रिजवी।
भारत के बिहार राज्य में चुनाव की गहमा गहमी तो है ही, अब भारत से बाहर भी कई देशों में बिहार के चुनावी दंगल पर चर्चा तेज हो रही है। इसी सिलसिले में अमेरिका में बिहार चुनाव पर चर्चा करने का एक नया अंदाज अपनाया जा रहा है, वो है लिट्टी पर चर्चा। इस कार्यक्रम के एक आयोजक अतुल कुमार कहते हैं,
हम लोग बिहारी लोग हैं कि हम लोग थोड़ा ऑथेंटिक होते हैं, हम लोग कॉपी नहीं करते। तो मोदी जी ने लिट्टी पे चाय पे चर्चा किया नेशनल लेवल पे, पर अगर बिहार में कुछ करना है तो हम लोग लिट्टी पे चर्चा करेंगे, तो ये आइडिया वहां से आया।
लेकिन लिट्टी ही क्यों? लिट्टी का आइडिया अतुल कुमार के साथी लक्ष्मी नारायण सिंह का था।
लिट्टी काइंड ऑफ एक जोड़ता है पूरे बिहार को, बस आ गया कि भाई लिट्टी पे चर्चा ज्यादा अच्छा रहेगा और थोड़ा ट्रेंडी भी है, पूरे बिहार के लोगों को ये जागरूक करेगा। लिट्टी पे चर्चा पर्पस वही है, और जिससे कि वो सही कैंडिडेट और सही सरकार चुन पाए।
कई चरण में होने वाले बिहार चुनाव के पहले चरण में 12 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। उससे 2 दिन पहले 10 अक्टूबर को अमेरिका के 100 से अधिक शहरों में बिहार चुनाव पर लिट्टी पर चर्चा का आयोजन किया जाएगा। एक आयोजक आनंद गुप्ता बताते हैं कि लोगों में बहुत उत्साह है।
देखिए, रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है और लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा है। यहाँ बहुत ही एंथू में लोग हैं। पूरे मैं अब्रॉड की बात करूँ तो हम लोग सोशल मीडिया से बहुत कनेक्टेड है, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका के कई सारे शहरों से। फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए हम बिहार से ग्राउंड से भी लोगों से जुड़े हुए हैं एंड दे आर ऑल वेरी एंथुजियास्टिक दैट वी आर गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ इवेंट।
लिट्टी पर चर्चा में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में 10 अक्टूबर को हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है और उनके लिए 20,000 से अधिक लिट्टी भी बनवाई जा रही है। इस कार्यक्रम के कई आयोजक न्यू जर्सी प्रांत में बसे हैं और ये विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले पेशेवर लोग हैं। जो लोग लिट्टी पर चर्चा कार्यक्रम से जुड़े हैं उन लोगों का अब भी किसी न किसी तरह से बिहार से ताल्लुक बना हुआ है। इनमें से अधिकतर लोग भारत बराबर आते जाते भी रहते हैं और इनमें से कई लोगों के परिवार के लोग अब भी बिहार में रहते हैं और सभी की चाहते कि बिहार में विकास तेजी से हो। लिट्टी पर चर्चा कार्यक्रम से जुड़े गिरजा शंकर पाठक कहते हैं,
चुनाव बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। आप अपने 5 साल के लिए अपने रूलर्स को चुन रहे हैं जो आपके लिए कानून बनाएंगे, जो आपकी दैनिक जीवन को इफेक्ट करेंगे। तो वहां हमें अपना आउटलुक ऐसा रखना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा, भैया ऐसा है जो कायदे का आदमी है उसी को चुनो, जाति पात जो है वो पर्सनल चीजों तक ही रखो, उसको सामाजिक चीजों में मत लाओ।
लिट्टी पर चर्चा कार्यक्रम से जुड़े लोगों का दावा है कि वो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं और ना ही उनका मकसद किसी पार्टी का एजेंडा आगे बढ़ाना है। इस आयोजन से जुड़े आलोक कुमार कहते हैं,
हम लोग किसी पार्टी पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक अच्छे, जिनके पास कोई दागी नेता नहीं हो, कोई मतलब अच्छे लोग हो, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पोलराइजेशन तो करना ही होता है हर एक पार्टी को। आज लालू जी बोलते हैं यादव मुस्लिम तुम आओ साथ में, तुम मुझे वोट दो, जो भी बीजेपी है हिंदुत्व की भावना, मतलब जो भी सब लेके आते हैं। तो जिस बात से भी पोलराइज होके एक बार किसी की भी सरकार बने पूरे स्ट्रांग बनना चाहिए, लाइक किसी पे डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए।
लिट्टी पर चर्चा के तहत अमेरिका भर से और अन्य देशों से भी लोग इंटरनेट पर विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स के जरिए वीडियो की शक्ल में अपने विचार भी भेज सकते हैं। दुनिया भर से भेजे गए वीडियो को लिट्टी पर चर्चा नाम से फेसबुक और यूट्यूब जैसी साइट्स पर एक जगह देखा भी जा सकता है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
आज सोमवार है और आज का दिन होता है आपके पत्रों का। आपके पत्रों के साथ हैं स्वाति बख्शी और राजेश प्रियदर्शी।
श्रोताओं की चिट्ठियों के कार्यक्रम आपकी राय के साथ मैं हूं स्वाति बख्शी।
नमस्कार, मैं हूं राजेश प्रियदर्शी।
और राजेश जी, आज चिट्ठियों की शुरुआत मैं थोड़ी तारीफ और हौसला अफजाई के साथ करूंगी।
करिए।
रामचंद्र सुतार फलसुंड जैसलमेर राजस्थान से चिट्ठी लिखते हैं, मेल किया है इन्होंने। लिखते हैं कि बीबीसी हिंदी का जितना सुनहरा अतीत रहा है, भविष्य उससे कहीं ज्यादा सुनहरा रहने वाला है। कहते हैं कि आदेश कुमार गुप्त का खेल समाचार हो, विदित मेहरा की फिल्म समीक्षा, सलमान रावी की रिपोर्ट, निखिल रंजन द्वारा दुनिया जहां रेहान फजल की विवेचना, या फिर राजेश प्रियदर्शी द्वारा आपकी राय, सब एक से बढ़कर एक है, पूरी टीम प्रशंसा की पात्र है।
रामचंद्र जी, आप हमारे पुराने श्रोता हैं, अक्सर चिट्ठियां लिखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
ये दूसरी चिट्ठी जो मैं उठा रही हूँ वो धीरज पाखरे की है। इन्होंने चिट्ठी लिखी है अकोला से और पोस्टकार्ड लिखा है। कहते हैं कि रेहान फजल जो भी करते हैं वो दिल से करते हैं। जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का नाम श्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पर लिया जाता है, वैसे रिपोर्टिंग में रेहान फजल का नाम सर्वश्रेष्ठ पत्रकार के तौर पर लिया जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इन्होंने 1965 की जो उन्होंने श्रृंखला तैयार की थी भारत पाक युद्ध की, उसकी तारीफ की है। एक चिट्ठी राजबली यादव ने गोंडा उत्तर प्रदेश से लिखकर भेजी है, इन्होंने भी रेहान फजल की भारत पाक युद्ध पर 1965 के युद्ध की जो श्रृंखला उन्होंने तैयार की थी उसके बारे में लिखा है, तारीफ की है और कहते हैं कि निष्पक्ष और ज्ञानवर्धक विवेचना थी। अगली चिट्ठी है वो जंग बहादुर सिंह की गोल पहाड़ी से आई है। इन्होंने वसतुल्लाह खान साहब की पाकिस्तान डायरी को पेश करने की तारीफ की है। कहते हैं कि जितनी भी दफ़ा सुनो मन नहीं भरता, हर एक अंक का लब्बो लुआब यही रहता है कि धार्मिक और सांस्कृतिक कट्टरवाद जो पहले पाकिस्तान तक सीमित था उसका विस्तार अब हिंदुस्तान में हो रहा है। लेकिन राजेश जी, आप इससे पहले कि जवाब दें, ये दूसरी चिट्ठी विनीत कुमार की है और ये लिखते हैं कि बीबीसी उर्दू के रिपोर्टर वसतुल्लाह खान की डायरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, वो केवल भारत की ही टांग खींचने वाली डायरी लिखते हैं, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ जो होता है उस पर चर्चा क्यों नहीं होती।
मेरा ख्याल है कि मुझे बहुत सारे, मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं, ये जो विनीत जी की शिकायत है वहां से, जंग बहादुर जी का शुक्रिया उसकी तारीफ के लिए। विनीत जी, वसतुल्लाह उन खास लोगों में से हैं जो किसी को नहीं बख्शते और उन्होंने पाकिस्तान के नेताओं के खिलाफ, पाकिस्तान की लोगों में जो कट्टरपन है उसको लेकर उन्होंने बहुत सारे और जिसको बहुत हार्ड हिटिंग कहते हैं उस तरह की चीज़ें लिखी हैं और पाकिस्तान और भारत दोनों में वो इसीलिए लोग उनको बहुत पसंद करते हैं और पढ़ते हैं क्योंकि वो इस मामले में किसी को नहीं बख्शते और जो उनको कहना है वो बड़े अपने खास एक अंदाज में कहते हैं।
और ये मेल है दीपक का, पानीपत हरियाणा से आया है। लिखते हैं कि इन्होंने अंग्रेजी में मेल लिखा है जिसे मैं हिंदी में पढ़ के बता रही हूँ। कहते हैं कि बीबीसी हिंदी की बहुत ही सम्मानजनक छवि है, लेकिन जो कार्यक्रम है वो कम सूचनाप्रद हैं, ज़्यादा सूचनाएं दी जानी चाहिए। इसके अलावा लिखते हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ज़्यादा विश्लेषण होना चाहिए, ना कि आपको ऐसी खबरें शामिल करनी चाहिए जो कि कम महत्वपूर्ण है, जैसे किसी गाँव का विकिपीडिया में शामिल होना।
बहुत शुक्रिया आपका चिट्ठी लिखने के लिए, और आपने एक उदाहरण दिया एक गांव का विकिपीडिया में शामिल होना, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो खबर हमने इसलिए की क्योंकि वो उस खास गांव की खबर नहीं है, बल्कि वो ये बताता है कि किस तरह से जो भारत के गांव हैं वो अब इस डिजिटल क्रांति से जुड़ रहे हैं, किस तरह से वो आगे आ रहे हैं। तो वो एक मिसाल की तरह है, रिपोर्ट में वो गाँव अहम नहीं है, ये समझना ज़रूरी है कि भारत के गाँव कितने तेज़ी से बदल रहे हैं।
और ये आखिरी चिट्ठी मैं उठाऊंगी, ये लिखी है शंभू शरण मंडल ने, और चिट्ठी दिलचस्प इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो शुरुआती लाइन लिखी है, यूं तो तेरे आस्ताने में, शायद ये मोती लिखना चाहते थे, लेकिन इन्होंने लिखा है यूं तो तेरे आस्ताने में मोदी के अनगिनत दाने जड़े हैं। तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि ये एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं, लेकिन फैला उजारा ने मुझे कुछ ज़्यादा ही आकर्षित किया है। ये बीबीसी का प्रयास निसंदेह प्रशंसनीय है और इन्होंने मोहनलाल शर्मा को धन्यवाद दिया है।
ये कार्यक्रम बीबीसी रेडियो 4 का कार्यक्रम है जिसका रूपांतरण मोहनलाल शर्मा बखूबी कर रहे हैं, और प्रोफेसर सुनील खिलनानी हैं जिन्होंने भारत की उन 50 शख्सियतों की ज़िंदगी पर ये पूरी सीरीज़ बनाई है, जिसमें हम अब गौतम बुद्ध से चलकर कबीर तक पहुँचे हैं, और ये यात्रा जारी रहेगी, और तारीफ़ के लिए आपका शुक्रिया
जी। और अब वक्त है कि हम पता बता दें।
जी पता मैं बता देता हूँ, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003, और अगर आप ईमेल से चिट्ठी भेजना चाहें तो पता है hindi.letters@bbc.co.uk। आपकी राय में आज इतना ही, राजेश प्रियदर्शी को और मेरे साथ स्वाति बख्शी को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
ये थे आपके पत्रों के उत्तर। और उधर कटक में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा 2020 मैच खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत से पहले बैटिंग करने के लिए कहा है। मेरे सामने बैठे हुए हैं आदेश कुमार गुप्त, बताइए क्या स्थिति है।
जी रेहान, भारत की हालत बहुत ही नाजुक है क्योंकि थोड़ी देर पहले 10 ओवर समाप्त हुए हैं और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने मैच पर अपना कब्जा पूरी तरह से कस लिया। भारत का स्कोर 58 रन 4 विकेट के नुकसान पर, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 2 रन बनाकर और सुरेश रैना 16 रन बनाकर क्रीज पर हैं। आज भारत की शुरुआत तब खराब स्थिति में बदल गई जब शिखर धवन और उनका स्कोर जब 11 रन था, तब वो LBW क्रिस मॉरिस की गेंद पर और शिखर धवन के बल्ले से 12 गेंदों पर 11 रन निकले, और उसके बाद विराट कोहली रन आउट हो गए। वो तब तक केवल एक गेंद खेलकर 1 रन ही बना सके थे, और मॉरिस का जो थ्रो था वो बहुत ही शानदार था, यानी दक्षिण अफ्रीकी फील्डर जो हैं चाहे वो डिविलियर्स हों, बहुत ही शानदार। और उसके बाद एक और बुरा समय भारत के लिए तब आया जब रोहित शर्मा डेविड मिलर के सीधे थ्रो पर रनआउट हो गए, उन्होंने 24 गेंदों का सामना करते हुए 22 रन बनाए। अंबाती रायडू रबादे की गेंद पर बोल्ड हुए, उन्हें ये ही नहीं पता चला कि इतनी बुरी तरह बीट हुए कि क्या कुछ हुआ। तो इस तरह से आज जो दूसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच है, भारत की स्थिति इस समय नाजुक है।
4 विकेट गिर चुके हैं, उसमें 2 रन आउट हुए, ये दिलचस्प बात है। और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। भारत और जर्मनी के बीच वित्तीय सुरक्षा और नागरिक उड्डयन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिनमें 14 दोनों सरकारों के बीच और 4 निजी कंपनियों के बीच हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बनारस में 3 थाना क्षेत्रों में सोमवार की शाम कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रतिकार रैली में साधुओं ने 4 से 5 गाड़ियों और गौदौलिया में एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। अमरीकी सेना ने कहा है कि अफगानिस्तान की सेना ने कुंदूज में हवाई हमलों के लिए अपील की थी। कुंदूज में MSF के अस्पताल पर हमले में 22 लोगों की मौत हो गई थी। रूस के लड़ाकू विमान के तुर्की के वायु क्षेत्र में घुसने पर तुर्की ने सख्त एतराज जताया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की देवशीष कुमार ने, रेहान फजल को, सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए, नमस्कार।